बहुत दिन से वो है स्विच ऑफ लेने का हम प्रबंध कर रहा था, क्योंकि मंदिर के सामने जो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, बिक्री हो रहा था, वो ठीक नहीं था, क्योंकि ये अच्छा रहता है कि प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग रहता है। बल्कि यद्यपि वो स्ट्रक्चर बहुत दिन से ही बन चुका था, बल्कि हम उसको शिफ्ट नहीं कर पाए, तो आज हम शिफ्ट कर रहे हैं। कैसा लगा ये शिक्षक हम लोगों को? ये पुराना जो मंदिर के सामने जो जगह था स्वीट शॉप का, वो कहाँ क्या है?
बहुत कंजेस्टेड है।
नहीं, वो जो काउंटर है, वो काउंटर किसके इस्तेमाल हो?
जस्ट वो विद फाउंडेशन के लिए अवचन दिखाना है।
अच्छा, और वैसे जो मैं भी देख रहा हूँ कि मैं पहले जितना समय मैं यहाँ दे रहा था, उतना समय अब मैं नहीं दे रहा हूँ या दे सक रहा हूँ। मुझे पता था कि धीरे धीरे ऐसा ही होगा कि मैं अब उतना समय उज्जैन में दे नहीं पा सकूंगा, और मेरे विचार से ऐसा ही होना चाहिए। जो हम एक कार्य करते हैं, उसको तैयार करते हैं, बस उसके उससे आगे बढ़ जाते हैं, और जो लोग पीछे हैं वो संभालते हैं। तो जब मैं देख रहा हूँ सब समान रहे हो, तो मैं भी और कुछ प्रचार में अपना समय देने की कोशिश कर रहा हूँ। और कुछ ऐसे मैं प्रोजेक्ट्स मैं ले रहा हूँ जिसमें अब अधिक समय उज्जैन के बाहर ही हमको देना होगा, और तुम लोग भी धीरे धीरे वहाँ भी आ सकते हो, क्योंकि प्रचार ही हमारा जीवन है। प्रचार के माध्यम ही ये कृष्ण भक्ति का प्रसार होगा। अगर हम प्रचार नहीं करेंगे तो इसका वृद्धि या विस्तार नहीं होता है। तो पहले तो मैं पहले ऐसे भी शुरू से ही मैं मतलब सन प्रभुपाद जी के अप्रकट के पश्चात मैं अधिक समय कहीं एक जगह में नहीं रहा। यद्यपि मायापुर मेरा बेस था, बल्कि मायापुर में मैं नहीं ज़्यादा दिन नहीं रहता था। उस समय मैं ही केवल एक सन्यासी था इस्कॉन में जो भ्रमण करता था। और एक बार मैं अपना जो शेड्यूल बनाया तो वो शेड्यूल फुलफिल करने में मेरा देखा कि 3 साल लग जाएगा। मैं 1 साल का ये कर रहा था, शेड्यूल बना रहा था, बल्कि वो 3 साल तक चला गया था। तो मेरा जीवन वैसा ही था। पहले शुरू शुरू में श्रील प्रभुपाद हमें अनुवाद के काम दिए थे, उनके सारे पहले मुलाकात से मैं ही मुलाकात के समय ही प्रभुपाद हमें ये सेवा दिए थे कि तुम मेरे ग्रंथों को बंगला में अनुवाद करो। वही मेरा मुख्य सेवा था, मूल सेवा था। और शुरू शुरू में मैं मैनेजमेंट में नहीं था, बल्कि एक ऐसा समय आया जब हमारे संस्थान में बहुत उलझन आया था। सन 85-86 में, तो इसलिए 87 में हमको जीबीसी में योग देने का पड़ा, जीबीसी बनना पड़ा। और तब से मैं मैनेजमेंट में जुट हुआ था। पहले मैं जो मैनेज कर रहा था केवल बीबीटी का ही मैनेज कर रहा था, जो बुक पब्लिकेशन का मायापुर कलकत्ता में जो बुक पब्लिकेशन का था बीबीटी, उसका मैं देखभाल कर रहा था। पहले मैं अनुवाद भी कर रहा था, मैं बुक प्रिंटिंग भी कर रहा था, सब कुछ मैं ही कर रहा था। और बल्कि 87 से मैं जीबीसी में जुट हुआ, और उस समय काफ़ी मुसीबत आया था हमारे संस्थान का। तो अधिक से अधिक समय इस कार्य में ही मैं जुट हमें जुट रहना पड़ा। और इसके पश्चात उस समय मेरा अनुवाद का काम वैसे बंद ही हो गया था, इतना ये था, प्रेशर था, इसलिए अनुवाद का काम बंद हो गया। और 87 से 86 में मैं चैतन्य चरितामृत का कंप्लीट किया था, चैतन्य चरितामृत का अनुवाद। 80 मेरा पहला, मैं भगवद गीता का अनुवाद किया, उसके पश्चात मैं प्रभुपाद लीलामृत का अनुवाद करना शुरू किया, उसके पश्चात कृष्ण बोध भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर इंस्ट्रक्शन साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन आदि ग्रंथ किया। तो केवल 2 ग्रंथ बाकी रह गया था, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत। तो एक दिन मैं विचार कर रहा था कि भागवत अब मैं शुरू करूँगा, भागवत का अनुवाद थोड़ा बहुत शुरू भी कर दिया था। तो एक दिन मैं और जयपताका महाराज बैठ के मायापुर में चर्चा कर रहा था। तो जयपताका महाराज कह रहे थे, ये शायद 84 का बात है। तो महाराज ने बताया 86 में चैतन्य महाप्रभु का 500 एनिवर्सरी है, तुम चैतन्य चरितामृत का अनुवाद कंप्लीट कर दो इस समय के बीच। तो मैं भी सोचा था चैतन्य चरितामृत का अनुवाद जरूरी है। तो महाप्रभु के 500 एनिवर्सरी के लिए 500 वर्ष पूर्ति के अवसर पर मैं चैतन्य चरितामृत का अनुवाद का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया, काम शुरू किया। ये चैतन्य चरितामृत का काम खत्म हुआ तब से मैं जीबीसी में फंस गए। और भागवतम का अनुवाद जो उसके पश्चात मैं शुरू करने को था वो सही रूप से कर नहीं पाया। थोड़ा बहुत करता था, बल्कि कितना प्रेशर था अनुवाद के लिए, कुछ लिखन के काम के लिए, लिखने के काम के लिए मन एकदम शांत होना चाहिए। मन में उलझन रहने से लिखाई का काम नहीं होता। तो उस समय इतना ये था, जैसा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आया फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, आयरलैंड, मायापुर तो था ही, वैसे विदेश का यूरोप में मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आया बेल्जियम, फ्रांस, हॉलैंड, आयरलैंड और अमेरिका में न्यूयॉर्क स्टेट और साउथ अफ्रीका भी आया, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस। साउथ अफ्रीका उतना मुश्किल नहीं था, परंतु साउथ अफ्रीका का वातावरण उस समय बहुत सुंदर था। मॉरिशस भी काफ़ी सही ही था, बल्कि फ्रांस एकदम ख़त्म हो गया था। हमारे जितने सारे मंदिर था वो चला गया। एक रेस्टोरेंट था, बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट था शहर के अंदर, वो भी खो गए थे। तो उस समय जो ऐसे एक टूटा हुआ जगह का रिस्पॉन्सिबिलिटी आया था। बेल्जियम उतना ख़राब नहीं था, बल्कि हॉलैंड एकदम नष्ट हो गया था। तो इसलिए बहुत समय देना पड़ा। यूके का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आया था, बल्कि मैं उसको छोड़ दिया। देखा कि ये सारे संभालना संभव नहीं है। तो वैसे बहुत सारे ये था, और अनुवाद की काम बंद हो गया था। तो सन 93 में मैं सोचा कि प्रभुपाद का सेंटिनरी 96 में होने वाला है, तो 96 में मैं भागवतम का अनुवाद कंप्लीट करूँ। अर्थात तीन साल के अंदर 30 वॉल्यूम्स का अनुवाद करना है। कोई आदमी बोल रहा था मुझे कि ये संभव नहीं हो, मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं सोचा अगर कोशिश तो कर ली, और भगवान की कृपा से 95 में ही सारे काम कंप्लीट हो गया। और उसके पश्चात केवल अनुवाद ही कंप्लीट नहीं हुआ, प्रभुपाद के सेंटेनरी के समय उसका पब्लिकेशन, उसका प्रिंटिंग भी, सारे प्रभुपाद जितना तक भागवतम लिखे थे, दशम स्कंद का चतुर्दश अध्याय तक, वो खत्म कर चुका मैंने, और वो प्रिंटिंग भी हुआ था। तो 95 में ऐसे लगा कि 95 के एंड में, शायद अक्टूबर नवंबर में, मैं सोचा कि नहीं, 96 में, 95 के एंड में कंप्लीट हुआ, 96 के शुरू में मैं सोचने लगा कि हमें कुछ करना चाहिए, कि प्रभुपाद जी के शतवर्ष पूर्ति के लिए हमें कुछ प्रभुपाद को कुछ निवेदन करना चाहिए। तो तब मैं सोचा, तब एक दिन मैं देखा कि एक पब्लिकेशन था जिसका नाम था ऑल द ग्रेट पर्सनालिटीज, द ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ द 20th सेंचुरी, विंश शताब्दी का सारे महान व्यक्तिगण, उनके बारे में एक ये निकला था। मैं सोचा कि उसमें प्रभुपाद का जरूर होगा, प्रभुपाद के बारे में जरूर लिखा, बल्कि मैं देखा प्रभुपाद के बारे में कुछ नहीं लिखा। मेरा बहुत कष्ट हुआ कि ये इस शताब्दी का जो सबसे महान व्यक्ति है, उनको, उनके बारे में कुछ नहीं लिखा। उनको कुछ भी किसी प्रकार का स्वीकृति नहीं दिया गया। तो बाद में मैं सोचने लगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा था, ये गलत फहमी हमारा है कि हम लोग प्रभुपाद के बारे में प्रचार नहीं किया। आदमी पहचानेंगे कैसे? ऐसे तो आम आदमी का तो देखने का आदत नहीं है, वो आम आदमी अंधा होता है तो उसको दिखाना पड़ता है, और दिखाने के लिए ये दिखाने का काम हमारा ही था, बल्कि हम सही रूप से काम नहीं किया, इसलिए इस दुनिया प्रभुपाद को पहचान नहीं सका। और तो उस समय सोचा कि प्रभुपाद के लीलामृत साक्षरूप महाराज ने लिखा है, किताब तो निकाला है, बल्कि किताब तो आदमी आजकल पढ़ता नहीं, सब मूवीज जाता है, सिनेमा देखता है। और मुझे याद आया कि गांधी का एक बहुत बढ़िया पिक्चर निकला था, और उसके माध्यम गांधी जी का महिमा सारा दुनिया भर बहुत रूप से फैल गया सुंदर रूप से। तो मैं सोचा कि प्रभुपाद के बारे में एक मूवी बनाऊंगा, और वो होगा मेरा प्रभुपाद के शतवर्ष में, शतवर्ष पूर्ति अनुष्ठान में प्रभुपाद के चरण कमलों में अपना निवेदन अर्पण। तो ये इसके बारे में मैं सोच रहा था, तैयारी भी कर रहा था, स्क्रिप्ट भी मैं लिखना शुरू किया, स्क्रिप्ट आउटलाइन लिखना शुरू किया था। तो एक दिन जब मैं बंबई में था तो हेमा मालिनी के साथ इसकी इस विषय में बातचीत हो रहा था, तो हेमा मालिनी कहा कि ये मूवीज का एक मुश्किल ये है कि ये अगर हिट नहीं हुआ तो कोई भी नहीं देखेगा, तो पूरा इन्वेस्टमेंट बर्बाद, पूरा जो ये है वो असफल हो जाएगा। अगर सक्सेसफुल होता, हिट होता तो सब देखता, अगर हिट नहीं हुआ, बॉक्स ऑफिस नहीं गया तो वो सारे बर्बाद हो जाएगा। तो उन्होंने बताया था कि आप एक वीडियो क्यों नहीं बना, टीवी सीरियल में एक दो एपिसोड अगर सही नहीं भी हुआ फिर भी कोई बात नहीं, लोग देखते रहे। तो मैं सोचा ठीक है, टीवी सीरियल भी बनाएंगे, और उस समय टीवी दूरदर्शन में स्लॉट मिलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि दूरदर्शन ही केवल ये था उस समय, तो जी टीवी, सोनी टीवी वगैरह नहीं निकला, केवल दूरदर्शन ही था 96 में। तो मैं दूरदर्शन का डायरेक्टर जनरल के साथ साक्षात किया, और ऐसा निकला कि वो बहुत धार्मिक व्यक्ति था, के शर्मा हैदराबाद के रहने वाले हैं, और जब मैं उनसे मिला उन्होंने बताने लगा कि इस्कॉन के बारे में उन्होंने जानते हैं, इस्कॉन के प्रति उनका बहुत श्रद्धा है, आस्था है, और उन्होंने बताया कि उनका पिताजी भी कृष्ण भक्त थे, उनका पिताजी भी शायद कलेक्टर थे हैदराबाद के कहीं डिस्ट्रिक्ट का, और उन्होंने ये करते थे कि जब गाड़ी का टैक्सी का लाइसेंस जब देते थे तो बोलते थे टैक्सी में हरे कृष्ण महामंत्र लगाना है। तो हरे कृष्ण तो इतना बड़ा भक्त था, तो उन्होंने के साथ बहुत अच्छा संपर्क बन गया था, और मैं जब बताया कि मैं एक टीवी सीरियल बनाना चाहता हूँ प्रभुपाद के जीवन के आधार पर, तो उन्होंने बोला ठीक है आप एक पायलट एपिसोड सबमिट कीजिए, और उसके बाद उन्होंने बोला कि आप इस्कॉन जब बनाएगा वो तो बहुत बहुत बेहतर होगा, सब उनका भरोसा था। वेरी नाइस मैन के शर्मा। तो उसके बाद हम पायलट ऑफिसर बनाए मुंबई में, तरुण धनराजगीर कहकर हमारे जान पहचान एक व्यक्ति, वो डायरेक्ट किया, वही सारे आयोजन किया था, वो और उनका पत्नी। उनका पत्नी हमारे इस्कॉन का भक्त थी, अभी भी है, और उन्हीं के माध्यम मेरा साथ तरुण का परिचय हुआ था। तो एपिसोड बनाया, तो पहला एपिसोड था चिकन सूप एपिसोड। प्रभुपाद बचपन में प्रभुपाद का टाइफाइड हुआ था, तो उस समय टाइफाइड का कोई इलाज नहीं था, केवल तो कोई इलाज नहीं था, तो डॉक्टर ने, अंग्रेज डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि चिकन सूप देने से शायद उसको इलाज होगा। और उनका मनोभाव ये था कि चिकन सूप में जो स्ट्रेंथ आएगा वो स्ट्रेंथ से वो टाइफाइड को ये कर सकेगा, क्योंकि उस समय टाइफाइड का कोई दवाई नहीं है, और टाइफाइड जब कोई बीमारी होता है उसका दवाई नहीं होता है तो बहुत खतरनाक होता है, तो मतलब वो बीमारी होने से उसको ये इलाज असंभव बन हो जाता है। बल्कि प्रभुपाद जी को जब प्रभुपाद जी का उम्र उस समय 5 साल का था, शायद 4-5 साल, तो जब चिकन सूप खिला, पहले तो प्रभुपाद का पिताजी एकदम नाराज थे कि मेरे बच्चा को मैं चिकन सूप नहीं दूंगा, तो उनको डॉक्टर ने समझाया कि आप ये तो दवाई है, ये तो खाने का कुछ नहीं, ये दवाई है, दवाई के लिए सब कुछ चलता है। उनका पत्नी भी उनको समझाने लगी, अंत में उन्होंने राजी हो गए, ठीक है। बल्कि प्रभुपाद जब को जब चिकन सूप दिया गया तो प्रभुपाद नहीं, एकदम बच्चा अवस्था में इसको मुंह में नहीं लिया, मुंह में डाला जोर से भी तो एकदम फेंक दिया। तब प्रभुपाद जी का पिताजी ने आकर हाँ बोला, तुम निकालो उसको, चिकन सूप नहीं दे। और उसका प्रभुपाद जी के पिताजी ने तब जाके प्रभुपाद को तुलसी महारानी के, कृष्ण के चरण कमलों में रखा और फिर भगवान के पास प्रार्थना किए, और अगले दिन प्रभुपाद एकदम सुस्त हो गए। तो ये जो एपिसोड, ये था पायलट एपिसोड हमारा। पायलट का मतलब एक एपिसोड सबमिट करना पड़ता है और तब उसके आधार पर स्लॉट मिलता है। तो ये इतना बढ़िया हुआ था कि मिस्टर शर्मा को जब दिखाया मैंने, उनका ऑफिस में ही ये है, मॉनिटर है, टीवी मॉनिटर और प्लेयर है। तो उस समय तो डीवीडी नहीं था, वो कैसेट में होता था, तो वीडियो कैसेट हम लेके गए उनके पास। तो उन्होंने केवल वो करीब 22 मिनट का ये था, एक एपिसोड था, 3-4 मिनट देखने के बाद ही उन्होंने अपना काम ये पैड के ऊपर ये कर दिया, एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया। तब उन्होंने हमको पूछा कितना एपिसोड होगा, तो मैं उनको प्रभुपाद लीला में तो दिखाया और बोला कि ये जो एपिसोड है ये केवल एक पैराग्राफ है इसका। तो आप बताइए कितना एपिसोड होना चाहिए। तब उन्होंने बोला, देखिए हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ज्यादा से ज्यादा 2 साल का होता है, 2 साल से अधिक नहीं होता, और बल्कि ये अगर और आगे भी करना है तो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 साल के 104 एपिसोड का ये हमको स्लॉट मिला था, वो स्लॉट भी प्राइम स्लॉट था, शनिवार 9:30 से 10 बजे का, शनिवार सुबह का स्लॉट बहुत अच्छा होता है। सबसे बढ़िया है रविवार सुबह का, उस समय महाभारत और रामायण सुबह 9:30 से 10 बजे तक या 9 से 10 बजे वो 1 घंटा का था। तो हमको आधा घंटा का स्लॉट मिला, शनिवार को मिला, शनिवार सुबह। तो वैसे हम अभय चरण का प्रोडक्शन में, मतलब प्रभुपाद का ग्रंथ अनुवाद का काम खत्म हुआ तो अभय चरण प्रोजेक्ट शुरू हुआ। और ये अभय चरण प्रोजेक्ट काफी समय लिया था क्योंकि जगह जगह में जाकर दुनिया भर हमको ये शूटिंग करना पड़ा। पहले तो मैं भारत में ही शुरू किया था, उसके पश्चात अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, इटली में और साउथ अफ्रीका में, जगह जगह में जाकर हम शूटिंग किया। और ये शूटिंग जब होता था 50-60 आदमी को लेकर ये शूटिंग होता है, तो ये शूटिंग इज वेरी वेरी आर्डुअस जॉब। तो काफ़ी समय लग गई इसको ख़त्म करने को। और जब अभय चरण प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तब मैं उज्जैन प्रोजेक्ट में 2004 नवंबर 10th हम यहाँ मंदिर पर, अक्टूबर 13th हम आए थे, 13th को आए थे, नहीं 23rd को शायद,
अक्टूबर 13th नवंबर 1 तारीख से हम,
अच्छा 30th और 13th
लास्ट
ओ चंद अक्टूबर 30th हम आए थे,
31st
और
नवंबर
का 1 तारीख से हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ था। ये जगह का नाम क्या
है,
महानंदा नगर कम्युनिटी हॉल में हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ था। और हम शायद 1 हफ्ता पहले आ गया था, और हाँ 1 हफ्ता पहले हम आए थे। और हाँ नवंबर से और सब भक्त लोग आए थे। हाँ और ऐसे यहाँ का कार्यक्रम शुरू हुआ था नवंबर 2004, मतलब 2004 का अंत में, 2005 से हम और अप्रैल से ये मंदिर का काम शुरू किया, फरवरी में मंदिर का उद्घाटन हुआ 2006। ये 2005-2006 में अधिक समय यहाँ ही था, कहीं नहीं, बहुत कम गया था विदेश उस समय। तो आप ये उज्जैन प्रोजेक्ट में देख रहा हूँ ठीक से चल रहा है। और मैं और कहीं और प्रोजेक्ट मैं शुरू करने वाला हूँ। मैं बताऊंगा ये प्रोजेक्ट प्रचार के लिए है, क्योंकि अगर आदमी कृष्ण भक्ति को ग्रहण नहीं करेंगे तो कृष्ण भक्ति का विस्तार नहीं होगा, संकीर्तन का प्रसार। और विशेष रूप से विदेश में ही इसका प्रचार होना चाहिए, विदेश में ही प्रचार अब कम हो गया है, मैं देख रहा हूँ उसकी। तो वैसे सब सही रूप से भगवान को सेवा करते रहो। तुम लोग जो इस मार्ग ग्रहण कर रहे हो उसके सही रूप से इसका इसका महत्व, इसका इम्पोर्टेंस समझकर, सही रूप से समझकर इसको ग्रहण करने का कोशिश करो। हम उज्जैन में ऐसे ही आ गए. मैं तो कभी कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उज्जैन में आकर मंदिर बनाऊंगा. यद्यपि उज्जैन के बारे में मैं जानता था, बचपन से ही उज्जैन के साथ एक संपर्क था, और वो था कविता के माध्यम. रविन्द्रनाथ टैगोर उज्जैन के ऊपर कविता लिखाए, तो इसके कारण महाकाल मंदिर के बारे में एक ये है, उसका कविता में वर्णन ऐसा हो रहा है. दूरे बहु दूरे स्वप्न लोके उज्जयिनी पूरे खुजीते गेछिन कबे शिप्रा नदी तीरे मोर पूर्व जन्मे प्रथम प्रियारे. कविता है, रोमांटिक है. इसका वर्णन ऐसे हुआ है कि उज्जैन के बारे में उन्होंने कह रहे हैं, सपना में मैं उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर कुछ याद आया था, उसके बारे में उसका वर्णन उन्होंने कर रहे थे. और ऐसा भी वर्णन हो रहा था, उस समय संध्या आरती हो रहा था महाकाल मंदिर में. तखन गम्भीर रंध्रे संध्या आरती बाजे, महाकाल मंदिर माझे तखन गम्भीर रंध्रे संध्या आरती बाजे. महाकाल मंदिर में उस समय संध्या आरती का आवाज घंटा बज रहा था. ऐसे वर्णन के माध्यम उज्जैन की एक कल्पना की रूप में उज्जैन के साथ संपर्क बना था. और भी कविता है उज्जैन के बारे में, विदिशा के बारे में, अवंती के बारे में, और बल्कि मैं कभी, वो तो पहले उस अगले पिछले जन्म का था, अगले जीवन का था, वो जन्म तो पीछे रह गया. इस्कॉन में ज्वाइन करने के बाद उज्जैन में क्या, कहीं भी मैं मंदिर बनाने का कोई ये नहीं सोचा. क्यों, मैं सोचा मंदिर तो काफी है और मंदिर बनाने का क्या जरूरत. बल्कि जब मैं यहाँ आया तो मंदिर बनाने का एक प्रयोजन मैं अनुभव किया और मंदिर बनाया. तो ऐसे ही उज्जैन के साथ संपर्क बना है. उज्जैन का जो प्रोजेक्ट है मैं करता रहूंगा, बल्कि जिस ढंग से उज्जैन में प्रोजेक्ट करने का मैं सोचा था पहले, वैसा शायद नहीं होगा. इसका दो कारण है. एक कारण तो ये है कि यहाँ के सरकार हमें ये नहीं दे रहे, मदद नहीं दे रहे. तो बोलते हैं जमीन देंगे, ये करेंगे, बल्कि जमीन नहीं देते हैं. मैं सोचा, उस समय मैं सोचने लगा कि मैं अगर ये प्रोजेक्ट और कहीं करे तो बहुत सारे सरकार हमें मदद देते रहे. जैसे ऐसा प्रोजेक्ट अगर मैं गुजरात में करता था तो वहाँ की सरकार तो कुछ ही, बल्कि यहाँ पहले बताया 300 एकड़ जमीन देंगे, चलो वो तो गया. इसके बाद ये यहाँ कौन सी जगह है, 30 एकड़ भी नहीं था, 28 एकड़ तो देने के लिए तैयार था. तो बाद में बनाने लगा कि ये नहीं है, वो नहीं है. तो मैं सोचा कि चलो, और ये तो एक कारण है. और एक कारण है कि अब पृथ्वी का परिस्थिति बहुत खराब है, अर्थनैतिक परिस्थिति पृथ्वी का बहुत खराब है. तो कुछ बड़ा प्रोजेक्ट अगर हम लेते भी हैं, बल्कि उसका सफलता विल बी डाउटफुल. मैं जो यहाँ जो ये कर रहा करने का कोशिश सोचा था कि जो थीम पार्क कृष्ण कॉन्शियस थीम पार्क, तो प्रोजेक्ट तो भारी प्रोजेक्ट था, मैं सोचा भी था बल्कि आप जो परिस्थिति है उसमें शायद ये थीम पार्क नॉट बी अ गुड प्रोजेक्ट टू गेट इन्वॉल्व। मैं सोचा आईटी पार्क में वहां पर छोटा रूप से हम ये कुछ ये करेंगे एग्जीबिशन, जैसे इसका नाम भी है वराह मिहिर आईटी पार्क, वराह मिहिर के नाम में है। वराह मिहिर का जो विचार था ज्योतिर्विद्या और उसके साथ साथ भारतीय संस्कृति का जो महिमा, ये हम वहां पर ही इन विभिन्न माध्यम से दिखाएंगे। तो बड़ा कुछ इतना बड़ा आईटी पार्क के थीम पार्क का जरूरत है शायद अब नहीं होगा। अब स्कूल प्रोजेक्ट जो है वो तो हम जरूर करना चाहते हैं, ऊपर वो प्रोजेक्ट हम यहाँ करेंगे क्योंकि कृष्ण बलराम का शिक्षा स्थली है उज्जैन, तो इसलिए स्कूल प्रोजेक्ट एक ये प्रोजेक्ट रहेगा जो हम यहाँ पर बनाएंगे, जहाँ विदेशों से लड़के लोग आकर शिक्षा प्राप्त होगा। ये दो प्रोजेक्ट हम करेंगे, आईटी पार्क का तो है ही है और स्कूल प्रोजेक्ट भी हम करेंगे, सरकार से जमीन मिले या ना मिले ये करते रहेंगे। और विदेश में मैं क्यों ये भावना अब लिया है इसका कारण भी मैं बता रहा हूं, प्रचार के लिए क्यों मैं सोच रहा हूं, इसके कारण ये है कि अमेरिका यूरोप में आज एक बहुत अर्थनैतिक संकट आया है और इसके कारण आदमी लोग अब सोचने लगे, क्योंकि जब मुसीबत आता है तब मनुष्य का मनोभाव गहरा बनता है, जब रुपया है मजा मजे में है तब भगवान के बारे में ना तो सोचते हैं और किसी के बारे में नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि ये जीवन का उद्देश्य है खाओ पियो मर जाओ खाओ पियो और जियो नहीं वो लोग तो जीते नहीं है वो मरते हैं ये उनका जीवन का उद्देश्य होता है, बल्कि जब मुसीबत में पड़ता है तब वो लोग सोचते हैं कि जीवन का और कोई एक महान उद्देश्य हो सकता है, और उसी समय उनको ये भगवत वाणी और भगवान के चरण कमल के प्रति भगवान के चरण कमल के और खींचने का अवसर आता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ, मैं देखा भी कि वहाँ का जो यूथ आर बिकमिंग वेरी वेरी फेवरेबल, और इसके साथ साथ ये भी देखता हूँ कि प्रचार करने का कुछ अवसर मिल रहा है, कोई और एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म में जैसे यूएन में यूनाइटेड नेशंस में हमें कुछ ये मिल रहा है, तो ये जो मौका जो मिल रहा है उसको सदुपयोग करने के लिए हमको वहाँ रहना है। अगर मैं वहाँ नहीं रहता तो इसका इस्तेमाल सही रूप से सदुपयोग में सही रूप से नहीं कर पाऊँ, मतलब मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका में अब अधिक समय देने का जरूरत है और उज्जैन के लिए जो कुछ करना है मैं तो करता रहूँगा, पर मैं जब नहीं रहता हूँ तब भी मैं करता हूँ, अब ऐसा एक समय आया कि हमें यह मैं यह नहीं रहने से भी कुछ नुकसान नहीं होगा, कुछ डिफिकल्टीज, कुछ डिफिकल्टीज नहीं। और तुम लोग सब मिलजुल के सेवा करो। जो बचपना जो है वो छोड़कर बिकम रेस्पॉन्सिबल, वापस में झगड़ा लड़ाई मत करो, क्योंकि कलियुग में, कलियुग का एक विशेषता ये है कि कलियुग का मतलब ही होता है कलह का युग, एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी। प्रभुपाद जी ने बताते थे कि दिस इज एन एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी। कलियुग का, कलियुग है कलह और मिथ्याचार का युग। सब कलियुग में झूठ बोलते हैं लोग, अपने थोड़ा सा लाभ के लिए झूठ बोलते हैं और लड़ाई करते हैं। ये लड़ाई का कारण क्या है? लड़ाई का कारण है एनवी एंड एंगर, क्रोध और मात्सर्य, क्रोध और हिंसा, ये है कलह का कारण। और सबके आधार क्या है? सब कुछ जो भौतिक जगत में हमारा जितने सारे मुसीबतें हैं उसका मूल कारण होता है अहंकार। अहंकार के कारण हम सब कुछ करते हैं। इसलिए इस अहंकार को त्यागना जरूरत जरूरी होता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि त्रिनादोपि सुनिचेना, त्रिनादोपि सुनिचेना का मतलब बहुत ही विनम्र बनो। विनम्रता का मतलब क्या होता है? विनम्रता का मतलब होता है अहंकार नहीं। अहंकार होता है गर्व, मद, घमंड, मैं बड़ा हूं। और विनम्रता का मतलब क्या है? मैं छोटा हूं। तो जब ये भाव हम अपनाते हैं कि मैं छोटा हूं, मैं तो शूद्र हूं, मैं नगण्य हूं, अगर कोई हमें कुछ बोला भी क्या, बल्कि जब घमंड होता है तब क्या होता है? देखो ये हमको ऐसा बोल, तो चलो हम चलते हैं। हम चल सकते हैं, यहां से चल सकते हैं, बल्कि भक्ति से नहीं जुड़ जाए, जहां भी हो भक्ति करते हैं। और सब कुछ भगवान की कृपा के रूप में ही दर्शन करना चाहिए, देखना चाहिए। जब मेरा कुछ तकलीफ होता है, अगर हम मान लिया कि ये भगवान का कृपा है, तो उस तकलीफ को हम सहन कर सके। भगवान की कृपा, मेरा पूर्व जन्म का कुछ, पूर्व का कुछ कुछ ये था, कर्म का फेर था, उसके कारण ऐसा। ऐसे अगर हम मान लेते हैं तब ये सहज हो जाता है, सहन करना। बल्कि अहंकार अगर रह गया तो ऐसे हम सहन नहीं कर पाए। हमारा मन में ये होगा कि देखो हमको कैसे, क्यों बोला है, हमें क्यों ऐसा हो रहा है। भगवान अगर है तो भगवान ऐसा मुसीबत में हमको क्यों डाला? भगवान मुसीबत में डाला अगर हम देखते हैं कि ये मुसीबत हमारा परीक्षा ले रहा है, कि ये मुसीबत में भी तुम मेरा शरण में रहोगे। मृत्यु के समय मुसीबत कितना होगा पता है? उस समय तक हम भगवान को शरण ले सकेंगे, ये हमको सच सोचना चाहिए। और वापस में जो कुछ ये होता है, संघर्ष होता है, उसको सुधारने का कोशिश करना, और जो ऊपर जो है उसको दोनों को मिलाने का कोशिश करना, मैनेजमेंट और लीडर्स का ये उत्तरदायी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे बड़े भाई छोटे भाई के बीच में अगर कुछ ये होता है तो बड़े भाई आकर उनको संभाल ले, ऐसा मत करो, मत समझा दो, वैसे ही वापस में मिलजुल के रहना चाहिए। संकीर्तन का मतलब ही है मिलजुल के भगवान की महिमा प्रचार, इसी का अर्थ है संकीर्तन, मिलजुल के। और कली क्या करेगा, कली वापस में संघर्ष का स्थापना करने का कोशिश करेगा। इसलिए मैं सब हर समय कहता हूं कि यहां का वातावरण सही रूप से तैयार करने का कोशिश करो। और मैं दृष्टांत देता था कि जब हम बगीचा बनाते हैं तो बगीचा में दो तरह का पौधे होता है, एक तरीका का पौधे से फूल आता है और दूसरे तरीका का पौधे से वो बगीचा नष्ट होता है। एक है फूल वाली पौधे और एक है वीड्स, वीड्स का हिंदी क्या होता है, खरपटवा, खरपटवा। तो अगर हम खरपटवा बगीचा बनाना चाहते हैं तो क्या करना होता है, खरपटवा को निकालना। तो इसलिए हम कितनी बार बोला है खरपटवा मत बनो, हम यहाँ बगीचा बनाने का कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ फूल के पौधे बने। और जब फूल का पौधा बनता है तो जैसे हमारा बगीचा लोग आके क्या बोलते हैं, तारीफ करते हैं, कितना सुंदर फूल खिला है। अब तो फूल नहीं है फिर भी केचिया झाऊ बन रहा है, वो भी देख लेंगे अच्छा। कम से कम केचिया झाऊ बन रहे जो अब हो रहा है यहाँ, फूल अगर नहीं हुआ बल्कि देखने में सुंदर है। और ऐसे देखो भगवान की सेवा करते रहो, सेवा जो करता है वो ही है फुलवाली पौधे, फूल वाली पौधे, फल वाली पेड़। तो फूल और फल जहां होता है उसको सब चाहता है, और जो खरपटुआ होता है वो क्या करता है, दूसरे को डिस्टर्ब करता है। तो हम सही रूप से रहेंगे तो सब हमको चाहेंगे, और हम सही रूप से नहीं रहेंगे तो सब बोलेंगे कि इसको हम नहीं चाहते। और विशेष रूप से जब नए भक्त आते हैं उनको संभाल के रखना चाहिए। प्रभुपाद जी भी कहते थे, प्रभुपाद जी जब आते थे मायापुर, प्रभुपाद पूछते थे वो कहाँ है, वो कहाँ है, जब सुनते थे कि वो चले गए, प्रभुपाद बहुत दुखी होते थे। प्रभुपाद बोलते थे मैं सबको ला रहा हूं और तुम यहां से सबको निकाल गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जब नए भक्त जो आते हैं उनको संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि जो नए हैं उनको तो विचार ये इतना गहरा नहीं है। हमको ये नहीं सोचना है कि मैं पुराना भक्त हूं तो इसलिए हमको त्रिनादों की सुनिश नहीं बनना है। जो नया भक्त है उसको गर्दन पकड़ के उसको ये बनाओ त्रिनादों की सुनिश बनाओ, ऐसा नहीं। ये हमारा वातावरण प्यार से भरा हुआ वातावरण, यहाँ के वातावरण प्रेम से प्रेम पूर्ण वातावरण बन या क्रोध हिंसा द्वेष का कोई स्थान नहीं। ऐसे कभी कभी गलत हो जाता है, क्या करेंगे, बल्कि जब गलती होता है तो गलती के माध्यम शिक्षा सीखने का कोशिश करना चाहिए। मतलब ठीक है, एक गलती हो गया, बाद में ऐसा गलती और नहीं करें। ऐसे भावना लेके एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, सबको हार्दिक भाव से बुलाना चाहिए। ऐसे कृष्ण भक्ति का प्रचार करते रहो। यहाँ मैं तो बोलूंगा कि हमारे यहाँ का वातावरण सुंदर है, अच्छा है, बल्कि और भी अच्छा होना चाहिए। कभी कभी एक दो भक्त के कारण बहुत नुकसान हो जाता है। कोई गलत जब हो जाता है तो उसके प्रभाव सारा मंदिर भी ऊपर आता है, वैसा कभी नहीं होना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हम साधु बनने के लिए आए, तो हमको साधु बनना चाहिए। लोग जब देखते हैं हमको तो किस ढंग से देखते हैं वो थोड़ा विचार करना, किस ढंग से उन्होंने हम उनका आशा क्या है, जब हमारे पास आते हैं क्या आशा करते हैं उन लोग, ये विचार करते हैं। इसका मतलब होता है सेंसिटिव बनना चाहिए, दूसरे का मनोभाव के ऊपर अनुभव करना चाहिए। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, सेंसिटिविटी का अंग हिंदी शब्द शायद है अनुभवी, है ना,
संवेदनशील
एक ही बात है, अनुभव दूसरे का वेदना का अनुभव कर, संवेदन उनका जो वेदना है उसको अपनाना। तो ये ऐसे मनोभाव हमें पोषण करना चाहिए। इस सिलसिले में एक बात भी मेरा याद में आया, जब ऋषभदेव ये पृथ्वी का राजा था, उनका 100 पुत्र था। तो ऋषभदेव जब घर से निकल रहे थे अपने पुत्र के पास राज्यभार अर्पण करके, तब उन्होंने जो उनको जो उपदेश दिए थे ये बहुत सुंदर उपदेश है, तो कल हम उस उपदेश को चर्चा करें। ऋषभदेव का पुत्र था भरत महाराज, महाराज भरत, जिनके नाम के आधार पर इस भूमि का नाम भारतवर्ष हुआ। और भरत महाराज ही अंत में जड़ भरत बने थे, और उनका और 9 पुत्र था जो जोगी बन गए थे, वो थे नव जोगेंद्र, कवि हवि आदि पुत्र थे। ठीक है, तो आज हम यहाँ ही तक ही रखते हैं, तो कल हम ऋषभदेव का बारे में चर्चा करेंगे। ऋषभदेव का उपदेश, हरे कृष्ण ओम प्रेमानंदे। आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, नहीं तो मैं कीर्तन करता था, मैं इसलिए आज कीर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि कल मैं कीर्तन करने की कोशिश करूंगा। आज सुबह से ही, कल से ही मेरे को थका हुआ हूँ, परसों सब निर्जल एकादशी किया था, ये बहुत अच्छा, परसों निर्जल एकादशी किया, उसके पहले मैं सफर भी किया, बॉम्बे से बेंगलोर गया, बेंगलोर से अहमदाबाद गया, अहमदाबाद परसों ठहरा इसके लिए निर्जला एकादशी के लिए, और कल सुबह निकल गया आबू, अब माउंट आबू करीब 4 घंटे का दूरी है अहमदाबाद से, सुबह निकला और शाम को रात को 10:30 बजे वापस आया, और आज सुबह 6 बजे फ्लाइट था, 6:30। तो 1-2 दिन ऐसा चलेगा, तो मैं तो ऐसे आराम करने के लिए उज्जैन आना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ भी ठीक है, आराम हो रहा है। तो 1-2 दिन ऐसा चलेगा, तो कल शाम को फिर 5:30 बजे मिलेंगे, कल भागवतम क्लास को। Thank you, Hare Krishna, and glory to Krishna. Gaur Premanande. Jai.